किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा नए पुराने लेखकों द्वारा लिखी दिल छूने वाली हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। आज सुनिए कहानी मोल भाव, जिसे लिखा है फानी जोधपुरी जी ने, वाचन है निधि बासु का।
अरे सही भाव लगाओ, दूसरी जगह 40 रुपए किलो भिंडी मिल रही है और तुम 100 रुपए किलो दे रहे हो।
अबीर के कानों में गाड़ी पार्क करते समय माँ के ये अल्फाज पड़े, जो बाहर सब्जी वाले से उलझ रही थी।
अरे मां जी, कौन देता है 40 रुपए में? 80 की तो खरीद है, अब 20 रुपए भी ना कमाऊं तो बच्चे कैसे पालूं? खूब जानती हूं तुमको।
ये इमोशनल बातें करके तुम हमें चूना लगाते हो और बाजार से दुगने से भी ज्यादा दामों में हमको चीजें देते हो।
अरे मां जी, कार बंगले वाली हो फिर हम ठेले वालों का हक क्यों मारती हो?
वाह 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 वाह, कार बंगले वाले हैं तो क्या सब कुछ लुटा दें? ऊंट की गर्दन लंबी है तो क्या उसे काट दिया जाए?
ये नोक झोंक और सौदेबाजी और लंबी चलती अगर अबीर आके माँ का हाथ पकड़कर अंदर न ले जाता। जाते जाते वो 500 का नोट ठेले वाले की तरफ फेंक कर सब्जी उठाकर माँ का हाथ पकड़े पकड़े अंदर आकर फट पड़ा।
क्या है माँ, तुमसे 100 बार कहा कि इन रेड़ी वालों के मुंह न लगा करो, जो भी मांगना हो दीपाली से कह दिया करो, वो ऐप से ऑर्डर कर देगी। न चिक चिक न झिक झिक, पेमेंट ऑनलाइन हो जाएगा।
आय हाय, ऑनलाइन ले लूं ताकि जाने कितने दिन पुराना कोल्ड स्टोरेज का माल सर पे मर दें और ऑनलाइन पेमेंट से मुझे पता ही ना चले कि हमें कितने का चूना लगा।
अरे रहने दे अबीर, मना मत कर, वही तो तेरे माँ के एंटरटेनमेंट का साधन है, तुझे तो पता है ना बेटा, इतने बरसों से इसकी यही आदत है।
अरे इसी आदत ने तुम्हारी गृहस्थी को संभाल लिया समझे, वरना 3 लड़कियां और 1 लड़के समेत तुम्हारे माता पिता और 3 बहनों के परिवार का क्या होता, ये भगवान ही जाने।
वो सब ठीक है माँ, मगर उस वक्त हालात दूसरे थे। पापा जी की एक पोस्ट ऑफिस की नौकरी से पूरा घर चलता था, महीने में 1 तनख्वाह आती थी और पूरा महीना खींचना पड़ता था। पर अब हालात वो नहीं है माँ, अब आप अबीर इन्फो के मालिक अबीर की माँ हो। अब मैं अच्छा कमाता हूँ, अब उतनी कंजूसी की जरूरत नहीं है माँ, ये लोग जितना मांगे दे दिया करो ना। हर महीने मैं आपको 2 लाख से भी ज्यादा रुपए इसीलिए देता हूँ कि आप चिक चिक ना करें।
तो बेटा ये जिम्मेदारी ना तू अब दीपाली को दे दे, मैं भी चैन से बैठूं। मोल भाव इसलिए करती हूँ कि आज अगर हालात ठीक है तो लंबे समय तक ठीक रहे। आज इनकम है तो क्या हुआ, मुझसे ये बेकार की लूट नहीं देखी जाती। अगले महीने से तू दीपाली को पैसे दे देना, वही घर की बहू है, वही चलाए घर। मेरा क्या है, मेरी आंखें किसी दिन बंद हो गई तो?
नहीं नहीं मम्मी, मुझसे ये सब नहीं होगा, ये जिम्मेदारी आप ही अपने हाथ में रखें। आपको तो पता ही है मेरे स्टोरी राइटिंग के प्रोजेक्ट्स कितने डिमांडिंग होते हैं, प्लीज मम्मी।
दीपाली ने अपना बचाव करते हुए कहा, जो एक लेखिका होने के कारण इतना तो समझती थी कि बड़ों का मैनेजमेंट दरअसल कितना बड़ा होता है।
अच्छा बाबा ठीक है, अब चाय पिला दे, फालतू की इस बहस ने सिर में दर्द कर दिया है। और हाँ, चाय लाते हुए पानी और सरदर्द की टैबलेट भी लेती आना। हाँ, इनकी कमाई बचाने को बहस करो फिर इनसे बहस करो, नतीजा खुद के सर में दर्द।
ये कहते हुए माँ अतीत के एल्बम में झांकने लगी, जब वो इसी शहर की पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में 2 कमरों के क्वार्टर में रहती थी। अबीर 3 बहनों के बाद हुआ था, घर में सबसे छोटा और सबसे लाडला। उस समय सरकारी नौकरी में भी इतनी आय नहीं थी। नतीजा ये कि अबीर के पिताजी पोस्ट ऑफिस से आने के बाद कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और सारी फीस अबीर की माँ के हाथ में रख देते, ये कहते हुए कि तुम इसी से घर चलाओ। माँ ने कभी उफ भी नहीं किया, ना ही ज्यादा की मांग रखी।
जो मिला उसी में घर चला लिया और इसी तरह समय पंख लगाकर उड़ता रहा। अबीर की तीनों बहनों की पढ़ाई, शादी ब्याह पिताजी ने अपनी सरकारी सेवा में रहते हुए ही कर दिए। इसी बीच अबीर ने भी पढ़ाई पूरी करके मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी। जब पिताजी रिटायर हुए तो ग्रेचुएटी के कुछ पैसों से एक छोटा सा मकान खरीदा और बाकी पैसे अबीर के हाथों में रखते हुए बोले, अबीर ये मेरी उम्र भर की कमाई है बेटा, इसे तुम रखो, जो भी करना है करो, हम बुढ़े बुढ़िया के लिए मेरी पेंशन काफी है। अबीर भी गुड बॉय निकला। उसने बड़ी समझदारी से अपनी एक आईटी फर्म खड़ी की। कई एम्प्लॉइज उसके पास काम करने लगे। कुछ ही अरसे में उसकी कंपनी ने बहुत तरक्की की। अबीर की लाइफस्टाइल अब बदल गई थी। महंगे गैजेट्स, शानदार कार, ब्रांडेड कपड़े और जूते, शहर के पॉश इलाके में कोठी के अलावा शहर के बाहर फार्म हाउस, सब उसने फाइनेंस के बलबूते पर हासिल कर लिया था। हालांकि माँ ने कई बार कहा कि अबीर जितना पैसा हाथ में हो उतने की ही चीज ले, मगर अबीर इससे उलट था। वो कहता था कि इस इंतजार में 10 साल निकल जाएंगे, ईएमआई पे थोड़ा ही ब्याज तो लगता है, जब उतना कमा रहे हैं तो ईएमआई नाम की चिड़िया पालने में क्या हर्ज है। अबीर नए दौर का लड़का था, उसे सब कुछ चाहिए था। वो चाहे महंगे क्लब की मेंबरशिप हो या हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, अपने वजूद को हाईलाइट करने की भूख उसमें भी थी, जिसके लिए वो बड़ी से बड़ी रकम खर्च करने में भी नहीं झिझकता था। इसके अलावा बड़े लोगों से दोस्ती निभाने में भी, उनको महंगे तोहफे देने में भी अबीर पीछे नहीं था। माँ भी जानती थी कि अबीर अब दूध पीता बच्चा नहीं रहा है, वो समझदार है, अपना भला बुरा समझता है, इसलिए उसने उसे टोकना भी बंद कर दिया। अबीर उसे बाकायदा हर महीने 2 लाख से ज्यादा पैसे सिर्फ घर खर्च के लिए देता था, जो कि बहुत ज्यादा थे। शायद इसके पीछे अबीर की ये सोच भी हो कि माँ पापा जो शौक अपनी जिंदगी में पूरे नहीं कर पाए वो अब कर लें। वो उनको पूरे परिवार के साथ वीकेंड पर बाहर डिनर भी कराता। साल में 2 बार विदेश के दौरे भी होते जहाँ पूरा परिवार साथ जाता। बस अबीर को उलझन होती थी तो माँ के मूल भाव से, जो जहाँ जाती वहीं शुरू कर देती। जब वो लोग पुष्कर गए थे तब भी वहाँ मंदिर के पंडों और अजमेर की दरगाह के खादिमों तक से उन्होंने मूल भाव किया, जबकि अबीर को ये सख्त नापसंद था। मगर बचपन के पौधे में संस्कार की ऐसी खाद पड़ी थी कि वो माँ से ज्यादा कुछ नहीं कह पाता था। अबीर की बीवी दीपाली तटस्थ थी, उसे सास बहू में सामंजस्य बैठाना आता था। अबीर की माँ भी 3 बेटियों की माँ थी, उन्होंने दीपाली को बेटी की तरह ही रखा। फालतू की टोका टोकी से वो बचती थी और इसलिए उनके घर में कलह नहीं होती थी। इस बीच अबीर की अंगनाई में माहिर और सहर नाम के 2 फूल खिले, जिससे परिवार भी पूरा हो गया और दादा दादी को व्यस्त रखने के लिए 2 बच्चे भी थे। मगर माँ की मोल भाव की आदत वैसी की वैसी, बल्कि अब तो बच्चों का सामान लेने में भी वो अपनी इस कला का प्रदर्शन बखूबी करने लगी। अबीर झल्ला कर रह जाता मगर कुछ ना कर पाता था। इतना उलझे हुए क्यों हो अबीर? दीपाली ने अबीर से पूछा।
कुछ नहीं दीपाली, सब तुम्हारे सामने है,
अबीर ने जवाब दिया। देखो अबीर, अब हम उम्र के इस पड़ाव में माँ और पापा जी की आदत को तो नहीं बदल सकते ना?
हाँ, यही तो मजबूरी है।
हाँ अबीर, हम नहीं बदल सकते, क्योंकि उम्र का एक लंबा हिस्सा उन्होंने इसी तरह निकाला है। या यूं कह दे कि आज तुम जिस स्टेटस को जी रहे हो ना, उसकी जड़ में शायद माँ और पापा जी की यही बातें हैं।
अरे यार, अब तुम भी उनकी साइड लोगी क्या?
नो 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 नो, अबीर बात साइड लेने की नहीं है। माँ जो करती हैं उससे उनको संतुष्टि मिलती है,
कि अपनी इस स्किल से वो घर के लिए कुछ बचाती हैं, तो हम उनके सुकून को क्यों खराब करें?
हाँ, उनका सुकून खराब ना हो, मगर 10-20 रुपए के लिए उनको झिकझिक करता देख के मेरा दिमाग भले ही खराब हो।
टेक इट इजी अबीर। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सिडनी वाले क्लाइंट का क्या रहा?
दीपाली ने बात का रुख बदलते हुए पूछा।
हाँ, वो सेटल हो गया, आधी पेमेंट भी कर दी उसने, बाकी बाद में करेगा। और तुम बताओ, तुम्हारी वो लैम्प पोस्ट वाली कहानी कहीं छपी?
तुम्हें याद नहीं क्या? बताया तो था कि युगवीर में छपी है, उसका पेमेंट भी आने वाला है, और इस कहानी का तो प्ले भी किया जाएगा। आज ही जयपुर के एक नाटक ग्रुप ने मुझे फोन किया था।
That's good यार। अगर तुम्हारी इस कहानी पर थिएटर वालों ने प्ले बनाया, तो क्या पता कोई डायरेक्टर इस पर फिल्म भी बनाए।
उम्मीद तो कम है, फिर भी देखते हैं क्या होता है।
सुबह जब अबीर ऑफिस के लिए निकला तो पापा जी ने टोका।
अबीर, तुम बिना मास्क लगाए जा रहे हो, पता है ना बेटा, चाइना से आए हुए वायरस के कुछ रोगी अपने शहर में भी मिले हैं।
मास्क लगा लो बेटा, और ये सैनिटाइजर की शीशी लो, जेब में रखो, और ध्यान रहे कि कितना भी जरूरी मामला क्यों ना हो, किसी से हाथ मत मिलाना।
जी पापा।
ये कहकर अबीर निकल गया और दादा पोते पोतियों के साथ खेलने में मगन हो गए। रात में खाना खाते वक्त माँ ने पनीर की प्लेट उठाते हुए अबीर से पूछा, अबीर क्या ये सच है कि पूरा शहर कोरोना के कारण कुछ दिनों के लिए बंद हो जाएगा?
हाँ माँ, 2-3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा।
हाय राम, फिर क्या होगा?
फिर होगा ये कि कोई ठेले वाला सब्जी या दूसरी चीजें बेचने नहीं आएगा, और तुम्हारा मन पसंद काम यानी मोल भाव बंद हो जाएगा।
तुमको तो बस हर बात में मेरा मोल भाव करना खड़ता है।
अगले दिन से लॉकडाउन लगा, जो हफ्तों के आगे महीनों का हो गया।
अरे यार, थोड़े दिन रुको, लॉकडाउन में सब बंद है, किसी क्लाइंट से कोई पेमेंट नहीं आ रही है, तो तुमको कहां से दे दूं?
अबीर किसी से फोन पर बात कर रहा था। किचन में खाना बनाती दीपाली से माँ ने पूछा,
क्या हुआ दीपाली, अबीर इतना चिड़चिड़ा क्यों रहा है?
माँ मुझे भी ज्यादा नहीं बताते, मगर मुझे पता है उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, इसी वजह से हमेशा खिंचे खिंचे रहते हैं, बच्चों पर भी गुस्सा करते हैं।
दीपाली ने जवाब दिया,
वही मैं कहूँ कि इसे क्या हो गया है, अब समझ में आई असली वजह।
लॉकडाउन खुल तो गया, मगर बाजार में वो तेजी ना रही जो पहले थी। अभी भी एक डर सबके सर पर सवार था। शाम को अबीर को टैक्सी से लौटते देखकर माँ का माथा ठनका। उस वक्त तो वो कुछ नहीं बोली, मगर खाना खाते वक्त पूछ ही बैठी,
अबीर तेरी कार कहाँ गई? आज तू ऑफिस से कैब में क्यों आया था?
हाँ माँ, हो सकता है कल ऑटो से जाना पड़े या फिर बाइक से। ये भी हो सकता है कि हमें ये कोठी छोड़कर पुराने छोटे वाले घर में शिफ्ट होना पड़े। 3-3 EMI घर की पेंडिंग चल रही हैं। कार भी आज किस्तें ना चुका पाने के कारण बैंक ने सीज कर ली। आप तो जानती ही हो कि घर फाइनेंस पे लिया था और कार भी। अभी मार्केट डाउन है, तो हो सकता है कि हमें और भी बुरा कुछ देखना पड़े।
माँ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना खाती रही। रात को अबीर अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर कुछ देख रहा था कि माँ दरवाजा खटखटाकर अंदर आई। उनके हाथ में बैग देखकर अबीर चौंक गया और पूछा,
क्या हुआ माँ, और आप ये बैग लेके क्यों आई हैं?
हम अभी घर नहीं छोड़ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कहीं से कुछ बंदोबस्त करने का।
हट पागल, नहीं तो।
ये कहकर माँ ने उसके सर पर चपत लगाई, मैं कहीं जाने के लिए ये बैग नहीं लाई हूँ, ये देख। और देखते ही देखते माँ ने बैग उलट दिया। अबीर इतने सारे पैसे देखकर हैरान रह गया।
पर आप ये कहाँ से लाई हैं?
मैं कहीं से नहीं लाई, ये तेरे ही पैसे हैं। तू हर महीना घर को राजसी ठाट बाट से चलाने के लिए जो बड़ी रकम देता था ना, मैं उसी में से बचत करके और हर जगह मोल भाव करके पैसा बचाती थी।
इसके अलावा तेरे पापा जी भी हर महीने अपनी आधी पेंशन मुझे दे देते थे। बस ये सब उसी का नतीजा है।
अरे वाह माँ, इतने पैसों से तो पूरे साल की ईएमआई दी जा सकती है, घर की भी और कार की भी।
हाँ बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ मोल भाव में कोई हर्ज नहीं, बल्कि इससे बचत होती है जो बुरे दिनों में काम आती है।
माँ अब तो मुझे सच में लगने लगा है।
क्या?
ये ही कि मोल भाव जिंदाबाद।
आप सुन रहे थे कहानी मोल भाव, जिसे लिखा है फानी जोधपुरी जी ने। वाचन था निधि बासु का।
आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो करना ना भूलें।